ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2020 में नियंत्रण रेखा पर जहां थे वहीं वापस आ गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यह सहमति बनी। रूस की सेना में लड़ रहे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि 85 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं और 20 लोग अभी भी वहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। सम्मेलन का विषय न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कजान में आकाशवाणी संवाददाता से कहा कि ये शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ये ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन करेगा। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के व्यापार, साइबर अपराध, घुसपैठ, आतंकवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अशांति फैलाने के प्रयास जैसे खतरे देश के सैनिकों के दृढ़ संकल्प के सामने नहीं टिक सकते। नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्री शाह ने कहा कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक बार ये कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे तो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। सरकार उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की योजना बना रही है। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि 50 और हवाई अड्डे शुरू करने के साथ ही वर्तमान हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने का भी योजना है। श्री नायडू ने कहा है कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर विचार कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय कला, विशेष रूप से नृत्य, दुनिया में समावेशिता का एक मॉडल पेश करती है। आज नई दिल्ली में भारतीय नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सभा को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि नृत्य कलाकार सांस्कृतिक और शांति के दूत हैं, जो संवाद को बढ़ावा देते हैं और मधुर राजनीतिक रिश्तों का आधार तैयार करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। मुख्यमंत्री ने कल राज्य सचिवालय नबन्ना में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण ग्रेप 2 आज सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। ये निर्णय नई दिल्ली में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति की बैठक के दौरान लिया गया। पुरुषों की 2020 इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत ए ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।